दाम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 13 मई 1993 साय लगभग 4 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में संपन्न हुआ। राम
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण। हाँ कोई बहन लिखती है मेरे ठाकुर जी चोरी हो गए, उसको कोई 15 साल हो गए, तो मेरी इतनी उन्नति हूँ करती हूँ। मेरे ठाकुर जी क्यों चोरी हो गए, मेरा क्या अपराध है, क्या कारण है, क्यों चोरी हो गई? तो भाई उस बात को तो भगवान ही जाने। हम इतना ही इनको मान सकते हैं कि वे ठाकुर जी आपके पास में रहने से राजी नहीं थे, अब आप अपने मनचाही सुंदर से सुंदर मूर्ति अथवा तस्वीर जिसमें आपको अच्छी लगे ऐसी और ले लो, पूजा करो, उसका ध्यान करो, पूजा करो, आरती करो, भोग लगाओ, कोई अर्थ नहीं है। भगवान की आज्ञा समझो, इसको भगवान की मर्जी समझो, भगवान की आज्ञा हो गई, इस बात से आप पूजा नहीं करो, मन से करो तो कोई हर्ज नहीं है। अगर मन से करो तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया है। मन से ठाकुर जी को बुलाओ, मूर्ति में तो फिर मूर्ति की भावना रहती है, मूर्ति में भावना न रह करके साक्षात भगवान है ऐसे समझ करके भगवान का पूजन करो, आरती करो, भोग लगाओ, खूब भगवान को लाज लगाओ, साक्षात भगवान को समझ करके, तो वो बहुत बढ़िया बात है। ये बात और
ये लिखते ही है, वास्तव में तो ऐसी बात नहीं। कहते हैं भागवत में भगवान के चरण कमलों के ध्यान की इतनी बात क्यों कहते हैं, मुख की क्यों नहीं कहते हैं?
कहते हैं मुख की भी कहते हैं, मुख की भी कहते हैं, चरणों की कहते हैं, दोनों कहते हैं, एक चरणों की नहीं कहते, चरणों से मुकुट तक की बात कहते हैं, और मुकमल बनना चाहिए, चरणों से चलना चाहिए, ऐसे कहते हैं।
तीसरा स्कंद 28वां अध्याय है, तीसरे स्कंद के 28वें अध्याय में ध्यानियों की बात आती है,
तीसरे स्कंद के 28वें अध्याय में ध्यानियों की बात आती है, ऐसी बात वहाँ पादावधि तैयार है।
भगवत चरणार
विंद भगवत चरणार विंदम कुछ बुरा याद नहीं हो रहा है इसको, तो खूब करना चाहिए दान। ये बात अलग अलग बताई है, जिसका दास्य भाव होता है उसका मन चरणों में लगता है, और जिसका माधुरी भाव होता है वो मुखों में लगता है, मुख के पीछे नेत्रों में लगता है, सख्य भाव होता है उस वक्ष पर लगता है। ये भगवान के प्रति हमारा क्या भाव है इसका द्योतन होता है। तो दास्य सखी में चरण प्यार लगते हैं, उनकी सेवा करूं, चरणों में रहूं, जैसे हनुमान जी महाराज है तो दास्य सखी है। इसमें ऊंचा नीचा बताया है शास्त्रों में, मानो पहले है दास्य है फिर सख है और वात्सल्य है उसके बाद माधुर्य है, ऐसा क्रम है और माधुर्य को सबसे बड़ा बताया है। तो ऐसी बात भी आती है, परंतु अपने जो विचार किया है, सिद्धांत का विचार किया है, मनन किया है, सुना है संतों से महात्माओं से, तो उसके अनुसार ये बात होती है कि जो कोई एक रति विशेष हो जाती है तो वो कम नहीं रहती। जैसे हनुमान जी महाराज की दास्य रति है तो वो माधुरी से कम नहीं है। जहां जो निष्ठा आपके बन जाए उस रति से तो वो कम ही नहीं है और सबसे पूरी हो जाती है। शास्त्रों में माधुरी रति को विशेष माना है, विशेष आदर दिया है कि माधुरी रति में साख्य सख्य वा दास्य सख्य वात्सल्य ये तीनों अंतर्गत आ जाते हैं उसी के अंतर्गत ही, इस वास्ते माधुरी का जो माना है। दास्य रति में भी भगवान की सब ठीक पूर्णता हो जाती है, इस वास्ते भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए। विशेष मनुष्यों का दास भाव है तो दास भाव ही होता
है। आत्मा का परमात्मा से मिलने के बाद परमात्मा की अनुभूति होती है, लेकिन जब तक अलग सत्ता नहीं रहेगी आत्मा की तब तक तो अनुभव नहीं होगा। जाएंगे तो फिर अनुभव किसको होगा?
ये आपके संसार की निष्ठा मजबूती से हृदय में बैठी हुई है, इस वास्ते आप अनुभव में त्रुटि मानते हैं। वो ध्यान करने वाला और जिसका ध्यान किया जाए वो और जो ध्यान वृत्ति, ऐसे आपके त्रिपुटि ठसा ठस बैठी है तो अनुभव किसका करते है? ये त्रिपुटि का अनुभव नहीं होता है, ये त्रिपुटि में भोग होता है। इसमें भी भगवान के पास अनुभव हो जाए तो कोई मना नहीं है, परंतु अनुभव होता है स्वयं को होता है, स्वयं को ही स्वयं का होता है। उसमें अपने आप को भगवान में मिला देते हैं। सख्य वासद आदि कैसे भी होता है और ज्ञान निष्ठा भी होता है, इस वास्ते जो भगत जैसा चाहता है वैसे हो जाता है। इसमें कोई कम ज्यादा नहीं है, ज्ञान रीति गति से अभिन्न होता उसमें और सख्य रति वात्सल्य रति माधुरी रति उसमें भगवान से संबंध होता है। उसमें फिर भगवान के सालों के सामने फिर सालों की शास्त्रीय आदि की मुक्तियां होती है, उनमें कोई फर्क नहीं है। संप्रदाय के अनुसार जो अद्वैत हो जाता है वो सबसे ऊंचा माना है और प्रेम के वैष्णवों ने भगवान के साथ रहना करना उसको ऊंचा माना है। तो भक्त की भावना है जिसको ऊंचा माने उसी करो। अनुभव दो होने से होता है ये बात नहीं है, दोनों में प्रेम में ये बात है और उसने अद्वैत सिद्धांत में ज्ञान मार्ग में बात है। ज्ञान मार्ग में अद्वैत हो जाता है उनमें मिल जाता है, तो जैसे जल की बूंद है समुद्र मिल गई इस तरह से एक हो गया, ऐसे हो जाता है। और भक्त लोग है उनको होता ये है अद्वैत और प्रेम का प्रेमाद्वैत होता है। भक्ति के द्वारा भगवान के साथ मिलन होता है वो प्रेमाद्वैत होता है। जब उसमें प्रेम होता है तो प्रेम और मस्त में उस मस्ती में मैं हूँ भगवान है एक संसार है कुछ से अधिक भगवान ही भगवान रह जाते हैं, अपना खो जाता है। पाया सभी जहाँ मैं पाया पता खोजा सभी बार जहाँ मैं पाया पता तेरा नहीं, कि जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं। अपने को खो देना है उसमें, ये प्रेम से भी ऐसा होता है और ज्ञान से भी होता है। प्रेम से ज्ञान होता है, दोनों में कोई कमी नहीं है, ना प्रेम में कमी है ना ज्ञान में कमी है। प्रेम में प्रेमाद्वैत होता है, उसमें प्रतिक्षण वर्धमान आनंद होता है, आनंद है प्रतिक्षण बढ़ता है। प्रेम में एक उछाले वाला आनंद होता है, जैसे दूध है पानी है उबलता है ना, खूब उबलता है उसमें क्रिया होती है, ऐसे इस तरह से प्रेमानंद में विलक्षण क्रिया होती हो अपने आप में अलौकिक। उसमें संयोग में वियोग, वियोग में योग, योग में योग, योग में योग, वियोग में वियोग, ऐसी चार अवस्थाएं होती है, तो उसमें आनंद कम नहीं होता है। उनमें आत्म आनंद है वो प्रतिक्षण वर्धमान है, अद्वैत आनंद होता है वो अखंड आनंद होता है। अखंड में एक रस, एक रस आनंद, इसमें एक रस में इसमें वर्धमान होता है, नया नया होता है, दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, नित्य नया आनंद, नित्य नया आनंद, नित्य नया आनंद, रोज नहीं वो बढ़ता ही रहती, उसकी सीमा नहीं आती, और अखंड रस में सीमा हो जाती है। वो सीमा ऐसी सीमा अपन नहीं है, पर अखंड रस शांत सदघर सिद्धान आनंद घान, ऐसे ज्ञान में अद्वैत में ऐसा हो जाता है। उसको कम कीमती नहीं है, अद्वैत वाले तो वैष्णव कम कीमती बता देंगे और वैष्णव लोग अद्वैत वालों कम कीमती बता देंगे, तो ये संप्रदाय की दृष्टि से है। परंतु ये जब तक कुछ अधूरापन रहता है तब तक ये बताते हैं, पूर्णता होने पर ये नहीं होता है, कोई कमी ज्यादा नहीं है। इस वास्ते साधुओं को चाहिए कि अद्वैत सिद्धांत वाले भी कभी द्वैत सिद्धांत वाले से द्वेष न करे, उपेक्षा न करे, उदासीन न करे, निंदा न करे, तिरस्कार न करे। इस तरह से ही द्वैत सिद्धांत वालों को चाहिए कि अद्वैत सिद्धांत वालों की निंदा, तिरस्कार, अपमान ये बिल्कुल न करे, अनुसरण अपने सिद्धांत का करे, पर दूसरे सिद्धांत की चर्चा, कोई की निंदा, कोई का तिरस्कार, कोई अपमान, कुछ छोटा समझना, ऐसा बिल्कुल न करे। अपना कल्याण चाहे तो, नहीं तो वो एक एक हीन करने से उनको एक देशी तत्व की प्राप्ति होती है, समग्र ब्रह्म जो भगवान ने कहा उसी प्राप्ति नहीं होती। इस वास्ते ऐसा न करके दोनों बाधक नहीं है, ऐसा मानते हैं संप्रदाय वाले। जैसे द्वैत सिद्धांत वाले कहते हैं कि ज्ञान में गया तो और योग में गया तो वो अजगर हो जाता है, एक तो सांप काट जाता है, एक वो अजगर गिर जाते हैं, ऐसी उपमा देनी है योग और अद्वैत को। और प्रेम की बात और विलक्षण है, वास्तव में कोई न सांप काटता है न अजगर निकलती है, सब प्रेम ठीक हो जाते हैं। मन में किसी संप्रदाय के प्रति, किसी सिद्धांत के प्रति कुछ भी हीन भाव कभी नहीं करना चाहिए। अपने इतना कह सकते हैं हम भी उस विषय में जानते नहीं, इतना कहना हमारा अधिकार सबको है कि इस विषय की उपासना करते हैं, मानते हैं, जानते हैं, समझते हैं, इससे अगर उस संप्रदाय में क्या है कैसा है हमें पता नहीं, ये तो सच्ची है। अगर वो प्रदाय ठीक नहीं है ये बिल्कुल झूठी बात है, क्योंकि उसको देखा ही नहीं है, उस विषय में क्या निर्णय करें, उसका निर्णय देना है ये गलती है। निर्णय न दे करके अद्वैत वाले अद्वैत मार्ग में, द्वैत वाले द्वैत मार्ग में चलो, अपने बात का तो अनुसरण करो और दूसरे संप्रदाय का आदर करो, सत्कार करो। अपने को उसकी अनुष्ठान की जरूरत नहीं है, अनुष्ठान अपने संप्रदाय अपने सिद्धांत का करो, पर दूसरे को ये मत समझो, दूसरे निकृष्ट है, ठीक नहीं है, अधूरा है, ये बात ठीक नहीं है। जो ठीक नहीं मानते यही ठीक नहीं है, वो सब ठीक है।
एक सज्जन का मार्मिक प्रश्न है, कहते हैं कि आप सभी संतों से सुना है कि भगवान जो कुछ करते हैं हमारे हित के लिए करते हैं और भले के लिए करते हैं, क्योंकि वे सर्वसुहृद हैं। अब प्रश्न ऐसा है कि कभी कोई रेलगाड़ी की दुर्घटना हो जाए या वायुयान की दुर्घटना हो जाए, उसमें कोई एक साथ परिजन मारे जाए, तो ऐसी स्थिति में पीछे वाले रोते भी लगते, परिवार के लोगों को कैसे उनको समझाया जाए कि भगवान ने यहाँ पर तुम्हारा इस प्रकार से हित किया है, और रोते मार होती है, पत्नी रोती है, कैसे समझ में आवे उनको?
ये समझ में नहीं आएगी, जब तक वो है तब तक असली बात समझ में नहीं आएगी।
भगवान ने उनका क्या हित किया?
भगवान ने पुराने पापों का नाश किया है, आगे पापों से सावधान किया है, पुराने पाप तो नष्ट किए हैं, उन कुटुंबियों के भी जो पाप थे वो नष्ट किए हैं, और अगर पापों से सावधान, कोई न कोई पाप का फल है, जो विधवा होगी, पुत्रहीन हो गई, भाई ही हो गया, बहन ही हो गया, ऐसे जो होता है ये वास्तव में पुराने पापों का प्रायश्चित है, और नए पाप न करें, क्योंकि ऐसा फल होता है जब हम संसार का संबंध चाहते हैं, संबंध रखते हैं और संबंध जन सुख भोगते हैं, उसका नतीजा है कि दुख होता है। दुख मरने से नहीं होता है, सुख चाहने से जीते रहे इस इच्छा से होता है। एक तो ये जीते रहे और इससे सुख लेते रहे, इस बात से मरने से होता तो कुत्ता मर जाए हमें दुख होना चाहिए, मरने से दुख होता तो किसी मर जाए दुख होना चाहिए, तो दुख उससे नहीं होता है। हम जिससे सुख की आशा रखते हैं, आराम की आशा रखते हैं, अनुकूलता की आशा रखते हैं, ऐसा कुत्ता हो तो कुत्ता मरने से रोगे, कुत्ता मरेगा तो रोना ही पड़ेगा, कोई मरे तो उसमें ममता और सुख भोग और सुख की आशा, सुख की इच्छा, ये साथ में जब तक रहेंगे तब तक भयंकर दुख होगा, मरने का दुख नहीं है। दुख अपनी इच्छा का भोग किसका है, जितना भोग अधिक भोगा है उतना दुख अधिक होगा, और दुख नहीं भोगा उसे सुख नहीं भोगा है तो दुख नहीं होगा। इस वास्ते मैं तो ये कहा करता हूँ कि भाई जिसके कोई कुटुंबी मर जाए उसको दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, गरीबों को भोजन कराना चाहिए, छोटे छोटे बालकों को लड्डू है खिलौना ये बांटना चाहिए, और भगवान के नाम का जप करना चाहिए, गीता रामायण का विशेष नाम का हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, उसकी अर्पण करना चाहिए। तो ऐसे करने से क्या होता है कि उसकी अर्पण हम करते हैं तो हमारा कर्जा उतर जाता है, कर्जा उतर सुख मिट जाता है, ये कर्जे का है, उसे सुख लिया है सुख लेना चाहते हैं, तो कर्जा किया है कर्जा लेना चाहते हैं वो मिट जाने से दुख होता है। तो ऐसा न करें किंतु सुख पहुंचा हमें, सबको सुख पहुंचाने वाले को दुख नहीं होता। संत महात्मा होते हैं सबको सुख संसारी नहीं पारमार्थिक सुख पहुंचाते हैं, आध्यात्मिक सुख पहुंचाते हैं, जिस सुख के बाद में फिर सुख की इच्छा ही मिट जाती है, ऐसा सुख देते हैं तो कोई मर जाए उनको दुख होता ही कि वो सुख लेते ही नहीं, सुख लेते नहीं दुख कैसा होगा, दुख होगा उनको जो सुख लेते हैं लेना चाहते हैं लेने की आशा रखते हैं उनको दुख होता है। तो वायुयान में कोई मर जाए तो दुख होता तो हम समझा नहीं समझते, ये समझ पहले रखनी चाहिए कि क्या है हमारा संसार, संसार ऋणानुबंध है, लैनिया दैनिया कहते हैं जिसको मारवाड़ी भाषा में, ऋणानुबंध मानो कुछ लिया है और कुछ दिया है, उसका जो ये होता है इससे होता है। जैसे कोई दुकान करता है और दुकान में पैदा नहीं दुकान उठाना चाहता है, उसके लिए दो बात करनी होगी, जिनमें अपनी रकम रही है वे जितना दे सके दे दे तो छोड़ दे, और जो ऋण है वो सबको चुका दे तो दुकान उठ जाएगी, नहीं दुकान उठेगी नहीं, क्योंकि उधार दिए बिना पहले मेरे पैसे आते नहीं, इस बार से देना पड़ता है, तो पैसे पुराने लेने से तो दे देंगे, लेते लेते कुछ कुछ बाकी रह जाएगा उनमें, और देना अपने जिसको जिसने लिया है उसको पाई पाई चुका दो। इस बार संसार में सुख सबको पहुंचाओ, आराम सबको पहुंचाओ, मन सुख की इच्छा सुख की आशा सुख का भोग मत करो, सुख का भोग करोगे सुख की आशा रखोगे सुख की इच्छा रखोगे तो रोना पड़ेगा ही, बच नहीं सकते। संसार से सुख ले आशा सुख इच्छा सुख भोग करता है उसको दुख भोगना पड़ता है, दुख यो नहीं होते दुखों के कारण है। इस बार संसार से वो लेना नहीं चाहिए, देना ही देना चाहिए इसमें ठीक रहता है, देना ही चाहिए देने के लिए, फिर लेने के लिए नहीं, देने के लिए ही देना है, लेना है ही नहीं हमें, वो सुख भगवान से भी नहीं लेना है, भगवान को ही देना है, उनको भी सुख पहुंचाना है, अपने भी अपने आप को अर्पण कर देना है, अपना सुख सुविधा भगवान को ही देना है, भगवान से भी लेना नहीं है, फिर ठीक हो जाएगा, फिर शोक चिन्ह मिट जाएगा। तो भगवान ने क्या कृपा की कि पुराने पापों का नाश किया और नए पाप न करें ऐसी सावधानी दी कि नया पाप करो तो ऐसा ऐसा तो भोगना पड़ेगा, इस बार नए पाप मत करो, अरे पुराने पाप भोगेंगे बड़ा अच्छा एन फल गया, बहुत ठीक हुआ भगवान की कृपा हुई, ऐसी बात है। तो ये बात बड़ी सरल सीधी है, इस बात को प्रश्न तो फिर प्रश्न करो, किसी भाई बहन के प्रश्न पैदा होता हो वो प्रश्न करो, बात प्रश्न करने से ज्यादा खुलेगी साफ स्पष्ट होगी। भगवान की तो मात्र क्रिया मात्र जीव के हित के लिए ही होती है, सुविधा सर्वभूता नाम ज्ञातवा मां शांति मिच्छति, भगवान सर्व के परम स्रोत हैं, परम हितेशी हैं, परम हित करता है। इस बात से जो कुछ घटना घटती है वो तो ठीक है, इस बात से होने में प्रसन्न रहना चाहिए और करने में सावधान, शास्त्र की आज्ञा से विरुद्ध न करें, शास्त्र की आज्ञा अनुसार करें, करने में सावधान रहें, होने में प्रसन्न रहें, तो सब ठीक होगा। पूछो कोई इसमें कोई बात पूछो जो मन में आती शंका हो।
साधन विषय तो नहीं है परंतु रामायण के विषय में पूछा है कि एक तरफ लक्ष्मण जी कहते हैं कि भाई आओ कोई किसी का सुख दुख देने वाला नहीं है, और दूसरी तरफ भी वो सुमंत्र जी को बड़े कड़े बोलते हैं दशरथ जी के प्रति, जब सुख दुख देने वाले है ही नहीं, सब अपने अपने कर्मों का फल ही है, तो फिर इतना कड़े बोले क्यों?
कड़े बोलते हैं दशरथ जी महाराज श्री के वश में हो गए, इस वास्ते ये वश में हो गए, भूल है, उस भूल के कारण कड़ा बोलते हैं। और दूसरा दशरथ जी जो लक्ष्मण जी का बोलना है वो एक बात ख्याल रखो सदा, लक्ष्मी जी का जो कुछ आचरण है वो राम जी का कोई अपकार कर रहे, तिरस्कार कर रहे को वो लक्ष्मी जी नहीं सहा जा। इस वास्ते लक्ष्मी जी गए वो दंड समान भयो जिस ताका जग रघु पर जिस पता का, भगवान का जग है वो विमल पता का है, लक्ष्मण जी का है वो डंडे की तरह है, भगवान के यश में कोई इधर उधर कर दे वो सही है, नहीं है और सब सही है परवाह नहीं और की, मगर राम जी का कहीं निरादर हो जाए वो दूसरी तो दूर रहे। राम जी ने भी जब कहा कि समुद्र के किनारे बैठ जाओ और उससे उपवास करो, ये मत लक्ष्मण नहीं भावा, राम जी का तिरस्कार हो जाए अपमान, ये हम नहीं सह सकते, ये क्या करते हो राम जी? तो राम जी को ये नहीं भाया, पर वो लक्ष्मण के लाओ धनुष्मान, ये राजी हो गए लक्ष्मण जी, हाँ ऐसा करना चाहिए, आपको नम्रता करनी, मारू मांगना, ये महाराज जी हम ऐसा नहीं देखता, आपका अपमान होता है, हम नहीं सह सकते। ऐसे जनकपुरी में जनक जी ने कहा वीर विहीन मही में जानी, तो वो सहा नहीं गया लक्ष्मण जी से, तो राम जी का अपमान, राम जी का तिरस्कार, राम जी की ऐसी कुछ लगे वो राम जी खुद करो तो नहीं सह सकते, राम खुद करे तो और कोई करे तो सह नहीं किया। तो रघुनाथ जी की जो विमल पताका है वो दंड समय ध्वजा नहीं गिरती, सवे ध्वजा नहीं होती है, ध्वजा नीति हो गई तो फिर तो हार गया वो, इस वजह से राम जी की ध्वजा विमल रहनी चाहिए, दंड समान भाई वो दृष्टा का, वो डंडा सुखता नहीं, ये बात है। लक्ष्मण जी को ये पाप और पुण्य की बात नहीं है, यहाँ यहाँ भगवान की भक्ति है, भगवान का प्रेम है, ये बात है। अब शंका करो इसी में,
केकी का तो बचाव कर लिया और दशरथ जी के विरोध में बोले हैं,
दशरथ जी ने विरोध किया, राम जी को दशरथ जी ने वनवास दिया है ना, केकई ने तो कहा है, वरदान मांगा है, दिया तो दशरथ जी ने, इस बात दशरथ जी बोल गई ऐसे बिगड़े बना बद्यात रामायण में वाल्मीकि रामायण में बहुत बिगड़े, तुष्ट में थोड़े बिगड़े। उन्होंने कहा हम जो आयुष धारण करते हैं अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं श्रृंगार के लिए नहीं है, आज आ जाओ भरत आ जाओ और भरत का मामा युद्धाजीत आ जाओ, सबको मार के लूंगा, आपको राजगद्दी बैठाऊंगा, कौन है आपको बनवास में भेजने वाला, मैं सबको देख लूंगा, दशरथ जी को कैद कर दूंगा, सब ठीक कर दूंगा, ऐसे जोर से मोहन सबको खत्म कर दूंगा। भगवान ने कहा भैया राज कोई सच्चा हो, ये कोई सच्ची बात हो तो उसके लिए कैसे किया जाए, इसमें क्या करता है, अपने बनवास स्थल तो मैं भी सुनूंगा साथ हूँ, साथ तो दशरथ जी को कोई कह दो क्या कहें, के कही तो ये हुआ के पीछे आए सब ग्रह तो भी गोसाव जी नहीं थे, मन का क्षोभ हो जाए, लक्ष्मी जी मन का क्षोभ नहीं मिटता है, के कही वनवास सब करते हैं नमस्कार करते हैं, और राम जी तो के कही गए मैं तो पहले पहले गए, इस माँ को दुख हुआ है तो माँ के लोग पहले बड़े दुष्कर फिर कुछ ले माँ के पीछे गए, पहले कई कई माँ के गए, कई कई माँ के दुख हो जाए, मैंने राम लाला को वनवास दे दिया। बोले थे कितने सुंदर बोले हैं, वनवास की बात वो ही है तभी कहा की बात कितनी बढ़िया बोली। मुन जन मिलन विशेष बन सब ही बात हित मोर, तिन में पितु आयस बोरी और सम्मत जननी तोर। माता तुम्हारी सम्मति है, सम्मति को तुम इसका किया हो सर, और सम्मत जननी तोर। अरे भरत प्राण पिए पावे राजू, विधि सब विधि में सन्मुख आजू, भगवान ऐसे बोलते। तो सौगुण चाहू, सौगुण हो गया ना, मुनिजन मिलन विशेष बने सब ही भात हित मोर एक, और तिन में पितु आयुष बोरे और सम्मत जननी तोर, अरे भरत प्राण पिए राजू। ये चार बातें हुई, सिग्न चौवन चाहू, चौवन चाहू था। जैसे हाथी है वो राज अलान समान, अरे वो खुश हुए जैसे हाथी गमन सुने, मन गमन सुने और आनंद अधिकार, राम जी का आनंद बढ़ता है। विपत्ति आने पर, दुख आने पर आनंद बढ़ना चाहिए, अगर समझो तो उस पर दुख क्या हो, मतलब बहुत ठीक हुआ है कि भगवान ने किया है, बहुत ठीक है तो आनंद आता है, उस वक्त है आनंद। अपमान में, निंदा में, ऐसे बुखार में, बीमारी में आनंद का अवसर आता है, आनंद आता, आनंद मौज होती है, मौज विशेष आनंद होता है। अब वो भोग चाहते हैं उनको नहीं होता, योगी को होता है, भोगी को नहीं होता। भोगी तो भोग चाहता है, भोगों तो नाश होगा भाई, भोगी को दुख पाना पड़ेगा ही, कहीं देख जाओगे नहीं। और योग की तो आनंद होता है, विपत्ति में बहुत आनंद होता है, भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है। 3-4 डिग्री बुखार हो तो मौज होती है, आनंद हो जाता है। अगर कोई पानी पाने वाला न हो तो फिर कहना है आनंद खिलता है, पूछने वाला न हो तो बहुत मौज है। तो अनुकूलता में सुख जाने वाले भी समझते नहीं, वे क्या समझे, वे क्या समझे। हाँ तो सेवा करना, आराम चाहते हैं हम, आराम की चाहना हृदय से मिट जाती है। तो सेवा करने वाला कुछ आराम देता है तो आराम नहीं सुहाते उनको, उनको तो मौत सुहाती है उसमें ही, आराम में सुख में आराम नहीं आता है। वृद्ध संत होते हैं, वृद्ध भवन पुरुष होते हैं, वे अनुकूल वस्तव राजी नहीं होते, प्रतिकूलता में राजी होते हैं। अरे भाई वैराग्य नहीं हुआ है, बिना वैराग्य वैराग्य की बात को समझ नहीं सकता आदमी, खुद के वैराग्य होने से समझ सकता है। रागी बैरा की बात को क्या समझे, भोगी क्या समझे, योगी की बात को। तो भोग मत रहो फिर देखो आने विशेष आनंद मिलता है। ये बात सिद्धांत से सच्ची है, अपने में ना आवे अनुभव में तो अपने भोगी है रागी है इस बात नहीं आती, बात तो सच्ची है। शेर जी के दर्द था बहुत, पथरी थी ऐसा कहते हैं लोग, पथरी तो उसका दर्द बहुत भयंकर होता था और उसमें मूर्छा होगी। मैंने देखा तो बैठे बैठे पत्र सुन रहे थे, ऐसी अवस्था में पत्र कागज आए सुन रहे थे, बता रहे थे बदल बदल ऐसे एकदम गिर गए, खाट उठ बैठे 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 थोड़े जा गए, उठे फिर भाई पत्र सुनो सुनो पत्र क्या है उसमें क्या है उसमें क्या है उनके लिए। किसी ने कहा कि महाराज कुछ अनुष्ठान करें, महामृत्युंजय आदि का जप करें जिससे ठीक हो जाए। ऐसी बात सुने तो कहते हैं ऐसा जो मेरे लिए करता है मेरा शत्रु है, मेरा बैरी है वो। महाराज बैरी कैसे हुआ कि हमारे प्यारे सिद्धांत पारे प्यारे के अनुग्रह को प्यारे के विधान को बदलना चाहते हैं, तो हमारा शत्रु है, मित्र थोड़ा ही है। हमारे प्यारे का विधान है, वो आनंदमय है, वो विधान को बदलना चाहता है, तो मेरा शत्रु है वो। हमें याद है तो हमारा कोई सहायता करेगा, सेवा करेगा, मंत्र जब करेगा, हमारी व्याधि दूर करे। ऐसे नहीं, सदा याद रखो, सुख में पुण्यों का नाश होता है और दुख में पापों का नाश होता है। तो आप बोलो, पापों का नाश होना चाहिए, पुण्य का नाश होना चाहिए? आप पाप रहना चाहिए, पुण्य रहना चाहिए? ये बात निर्विवाद सिद्ध है कि दुखों में पापों का नाश होता है और सुख में पुण्यों का नाश होता है। और वे पुण्य पाप से दूर से ऊंचे उठे होते हैं, मौजूद होती है, विश्वास आनंद होता है। उनको दुख कभी होता ही नहीं। दुख कहाँ होगा, कब होगा? विपरीत से विपरीत बात में आनंद होता है, अनुकूलता में रहता है वैसे ही। तो दुख होने की कोई गली नहीं रही, कोई रेखा ही नहीं, कोई अवकाश ही नहीं रहा। दुख आगा कहाँ से बुझा? इस बात से बहुत विलक्षण आनंद है भाइयों। मैं तो कहना है, ऐसे सुख को, आनंद को अभी जीवित अवस्था में भी पालना चाहिए। सब स्वतंत्र है, सब सबल है, सब अधिकारी है, सभी योग्य है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए अयोग्य नहीं है कोई भी। केवल अभिलाषा, केवल चाहना, कितने घर की पूंजी चाहिए और जरूरत नहीं है। बहुत विवेक वैराग्य समाज सरस्वती सुधार, ये कई आठ अंतरंग साधन है। ये ठीक है, प्रक्रिया में है ठीक, अच्छा वो भी बात अच्छी है, परंतु असली भीतर की चाहना होनी चाहिए तत्वों की प्राप्ति की। कैसा ही ज्ञान हो, सुना था अभिषेक शूद्राचार हो, अभिषेक ही पापे भी है, सभी सुनाया था। पापी से पापी को परमात्मा के आदमी सब है। माँ की गोदी के सब अधिकारी, क्योंकि माँ है, मेरी माँ है, माँ है। भगवान की गोदी में सब अधिकारी है, सभी योग्य, अयोग्य कोई है ही नहीं। योग्यता विशेषता संसार में काम आती है, भगवान के यहाँ योग्यता की कोई पूछ नहीं, कोई इसका मूल्य नहीं है। मौज है उसका। अब पूछो कोई बात, पूछो और। हाँ, जो सेवक साहिब संकोची निज हित है तासुमति पोची पोची पोची। मारवाड़ी भी बोलते हैं लोग, लुगाई राक्षसों को मारते हैं तो ऊपर हेठ हेटे है, राक्षसों को हेटे ले लिया, तासुमति पोची
पोची
पोची मारवाड़ी है। हिंदी में भी आ जाए बोले हेटे तो मारवाड़ी है। हेटे दे दे वो बंदरों के लिए चेष्टा गहनार कपड़ा फटा घोड़े को मुंह बोले फेंक दे तो देखे। विचित्र बात है। और पूछो
आदमी
कुछ समय क्या है, वो दूसरे आप बताती है और अपने अपने उद्योग से दूर नहीं कर सकता तो भगवान शुरू हो जाता है। अपने उद्योग करता है, अपने बल का अभिमान रहता है, मैं कर सकता हूँ, तब तक शरण नहीं होता। अपने बल का, अपनी योग्यता का, कुछ अपने भान होता है, विद्या का, वर्ण का, आश्रम का, तब तक शरण नहीं होता। अपने में तो कुछ योग्यता नहीं और कोई दूर कर सकता नहीं, और भगवान की मैं विश्वास, दो बात में भक्त हो जाता। समय आता नहीं है, समय तो भोगों के लिए आता है। प्रभाव तो होता है, प्रभाव है वो, पुण्यों का प्रभाव विशेष काम नहीं करता है। आपके कोई पुण्य का प्रभाव है, संत मिलन का ऐसा अवसर है तो आप गाड़ी में बैठे वहीं पास में संत बैठ गए, घंटा दो घंटा बैठ गए, आप उतर गए, बस पुण्य का फल हो गया। लाभ अपनी लालसा से ले सकते हो, लालसा के बिना अच्छे से संत मिल जाए लाभ नहीं ले सकते, आपकी लालसा नहीं हम नहीं ले सकते। ये नई बात है, ये पुराने पुण्यों का फल नहीं है। पारमार्थिक उन्नति है वो अपनी अभी वर्तमान की उत्कंठा के अधीन है, ये पुण्य का फल नहीं है। पुण्य का फल भोग होता, फले सतो निबज्ज है। ये सत्संग करने वाले सत्संग बाद कहाँ जाते हैं?
नहीं, महाराज जी की बात का उत्तर दो पहले।
सत्संग होने के बाद ये लोग कहाँ जाते हैं?
अपने घरों
में। अब तो वो ही अपने अपने घर जाता है, जैसा जैसा अपने पुण्य पाप किया उसके अनुसार जाते हैं।
दूसरा प्रश्न कर दिया, जीव आत्मा में क्या भेद है, कौन मरता है, कौन जीता है, क्या है?
जन्मता है मरता है शरीर, खुदा पिपासा प्राण से मनसा शोक मोह को, और जन्म मृत्यु शरीर से सड उर्मी रहता है शिवा। ये जन्म मृत्यु शरीर का होता है, शरीर जन्मता शरीर मरता है। मरता क्या है? मृंग प्राण त्यागे, ये जीव प्राण धारण है, प्राण धारण के लोग जीवन कहते रहे, प्राण छूटने को मृत्यु कहते हैं। ये पकड़ लिया, सीधी गया, छोड़ गया, बढ़ गया, मन मन कुछ नहीं है।
कर्मों का फल कौन भोगता है?
जो करता है वो भोगता है, जिसे कोई भोगता है। जो कर्म करता है वही फल भोगता है, फल दूसरे थोड़ा ही भोगता है।
थोड़ा दिन सत्संग करो, आप नए आदमी है क्या?
सत्संग करो, पहले प्रश्न करो तो प्रश्न लामी होगा, बढ़िया होगा, उत्तम होगा। तो सिर्फ सभी बोल रहे हैं तो हाथ जोड़ दो उसको। मनुष्य की क्या प्रवृत्ति है, जो कर सके तो वो तो करते नहीं, नहीं कर सके वो होता नहीं, रह जाके जीता के जीता ही। तो कर सको वही करो, तो नहीं कर सको क्यों ना हिचको उसके लिए, तरफ थोड़े ही मुंह तुम्हें। नाम तो करो, कीर्तन करो मस्ती से, याद ना जाएगा।
शुभ कर्म करने में प्रमाद और आलस्य आ जाते हैं, क्या करें?
क्या क्या आलस्य उड़ो, प्रमाद मत करो। ये आ क्या जाते हैं? ये तो आपकी स्वीकृति से आते हैं, अस्वीकृति से नहीं आएगा। आपको तो नहीं आते, नहीं आएगा। आप आराम सुख भोगते हैं, प्रमाद का आलसी का तामसी सुख में आ सकती है, तामसी सुख आ जाता है। राजसी मारे राजसी आ जाएगा, राजसी तो मिलेगा नहीं मिलेगा, तामसी तो मिल जाएगा, खुला है वो, कोई नहीं लोग नहीं। प्रेमी क्या बता भाई, ऐसा तो ऐसा हो जो पता लगे। एक बात हमने पढ़ी है, सुनी है, कौशल्याम्बा सुमित्रा से बात करती है कि बहन ये बात बताओ, राम जी राम लक्ष्मण सीता जी वनवास में चले गए, ये बात सच्ची है? क्यों प्रश्न क्यों उठा कि मैं देखती हूं तो मेरे सामने राम लक्ष्मण और सीता दिखते हैं, यहाँ दिखते हैं, वहां दिखते हैं, जिधर देखो उधर दिखते हैं, तो वनवास में चले गए तो दिखते कैसे, और वे दिखते हैं वे यहाँ है तो हृदय में जलन क्यों होती है? हृदय में तो जलन होती है और वे दिखते हैं सामने, क्या बात है? सुमित्रा तुम ठीक बताओ कि राम जी वनवास में गए कि नहीं गए, ठीक बताओ, मैं जान नहीं पाती। तो ये वियोग में योग है, वियोग हो गया तो योग सामने दिखते हैं प्रत्यक्ष में। वियोग में याद बहुत ज्यादा आती है। जब तक राम लक्ष्मण सीता अयोध्या में थे तब तक कौशल्या को इतनी याद नहीं आती थी, राम जी की, सीता जी की, लक्ष्मण जी की, उनके साथ में है ही वो याद किया। अब वे चले गए तो वियोग हुआ, वियोग में सामने दिखते ये योग हुआ, वियोग में योग हुआ, वियोग में वियोग, ओ कहाँ चले गए राम जी, कहाँ चले गए, वो भूल गई, तो वियोग में वियोग हो गया, वियोग में संयोग हो गया। अब संयोग में वियोग हो जाता है कभी कभी, भगवान ऐसे है, श्री जी का होता है ऐसा, श्री राधा जी का ऐसा होते है, भगवान कहाँ चले गए, कैसे कौन चले, भगवान चले गए, भगवान चले गए, पास में विराजमान है भगवान और भगवान चले गए, अब क्या करूं, सखियों पूछे सखियों सर नंदनंदन से मिला दो, भगवान से हमें मिला दो, भगवान कहाँ चले गए। तो योग में वियोग हो जाता है, वियोग में योग हो जाता है, वियोग में योग, योग में योग, वियोग में चारों अवस्था मिलने पर आनंद होता है, वियोगों में होता है। तो वियोग में वियोग, योग में योग तो जानते हैं, वियोग में संयोग, संयोग में वियोग, ये ज्यादा प्रेम की मात्रा वैसे जानते हैं। अधिक प्रेम की मात्रा हो जाती है तो ऐसी विलक्षण अवस्था होती है, बड़ी मादक अवस्था होती है, बड़ी मीठी रसीली गहरी तरांतर अवस्था होती है, उसमें ऐसा होता। प्रेम को जल्दी जल्दी आदमी पहचानता नहीं, प्रेम है वो ज्ञान के बाद होता है, असली तत्व ज्ञान के बाद, तत्व ज्ञान भी जब संतोष नहीं देता तब प्रेम जागृत होता है, और संतोष में राजी हो जाता है तो बस ठीक, बोध हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है। ऐसे प्रेम है विलक्षण अलौकिक है विचित्र। और बोलो मौज बहुत है, आनंद बहुत, आप देखो निष्कामता की बात सुनने से आनंद होता है, अगर निष्काम हो जाए तो कैसा है, भगवान की बात से सुख होता है, अगर भगवान का मिलन हो जाए तो कैसी बात है, तत्व ज्ञान की बातों में सुख होता है, अगर वो बोध हो जाए तो कितना आनंद होगा, बातों में सुख है, उसको प्राप्त करना मनुष्य का अधिकार है, मनुष्य मात्र प्राप्त कर सकते हैं, प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, बोध प्राप्त कर सकते हैं, धन प्राप्त करना हाथ की बात नहीं है, जैसे पहले सुना जाना जो हाथ की तो करते नहीं, करते वो हाथ की नहीं, धन इकट्ठा था धनवान बन जाए हाथ की बात नहीं, अरे भजन कर नृत्य कर सकते वो करते नहीं, लाख रुपया उम्र भर में एक जगह अपने पास में एक साथ देखने का मौका थोड़ा आदमी मिलता है, लाख नाम रोजन ले सकता है, इसमें स्वतंत्र है, रोजन लाख नाम ले सकता है, पर नाम लेने में चेष्टा नहीं करता, रुपये में चेष्टा करता है, जो हो नहीं सके उसमें तो करता है उद्योग, यार हो सके उसको करता नहीं, ऐसा दुख पा रहे दुख पा रहे, अब क्या करें बताओ, हमारे तो समझ में नहीं आती बात। आप कर सो वो साधन तत्वता से करो, उस दिन राम 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 रात दिन लग जाओ सब हो जाएगा, कर सके तो वो तो करते नहीं करना चाहते होता नहीं, अरे होता वो भाता नहीं, अरे भाता वो रहता नहीं, ये आफत है, जो बात है वो तो रहता नहीं, नहीं है चाहते वो हो जाता है, ऐसा आते वो होता नहीं, और कर सकते हैं वो करते नहीं, और कर नहीं सकते हैं झगड़े उनके लिए क्यों पूरा फड़ा रहे होगा। सीधी साधी बात है, कर सकते हो करो और हो जाएगा। कर सकते हैं वो करना, करने से जो मिलना चाहिए वो मिल जाता है। ये बात है, मात्र मनुष्य अधिकारी है उस तत्व के, सब अधिकारी, सब योग्य है, सभी सबल है, परंतु करते नहीं। कर सकते वो करते नहीं। आप बताओ, हरदम राम राम करने में कौन बाधा देता है? कोई मना करता है? वो करते नहीं। मैं मां सुना लो राजी हो जाते हैं, परंतु करते नहीं। और धन संपत्ति चाहते हैं वो मिलती नहीं, नहीं मिलती उसकी चाहना करते हैं, कर सकते हैं उसकी चाह नहीं मिलती। अब क्या करें बताओ, हमारे तो बड़ी आफत आई हुई है। आप कृपा करो तो आफत मिट जाए हमारी, हमारे ठीक हो जाए। करो कृपा करो, जो कर सकते हो करने लग जाओ, आगे आप से आप आ जाएगा, आप से आप। साधन से साधन उदय होता है, अगर प्रकट होता है, और प्रकट होता है वही साधन असली होता है, किया जाता है वो नकली होता है, होता है वो असली होता है। भगवान का भजन करते हैं, संसार की याद आती है तो भजन तो होता है नकली, संसार होता है असली। फिर लगने से भगवान का भजन असली होता है, फिर संसार की याद नकली, वो करना पड़ता है काम। ये भगवान की याद होती है मस्ती से, आनंद से। और पूछो, मौज हो जाए, आनंद हो जाए।
भगवान की तरफ चलते हैं तो बाधा तो आती है,
बाधा कोई है ही नहीं भगवान की तरफ। आप बाधा मान लेते हैं, बाधा नहीं आती, आप उन्नति के लिए आता है। जैसे पहाड़ चढ़ते हैं तो इतना पत्थर आ जाता है, तो चट इतने चढ़ गए, इतने ऊंचे चढ़ गए। बिना एकानी प्रभु मूर्ज सू प्रभु तया भी गुप्ता विजलंती निर्भय। आपसे सुरक्षित होते हैं वे निर्भय रहते हैं। विनय का जो विजय बड़े विघ्न है, बिना कोई विघ्न राज है बड़े विघ्न, उनके माथे पर पाव दे चले जाते, जैसे ध्रुजी मदन मौत के सिर पर पाव रख कर चले गए। माँ माँ से भगवान की दोनों का आश्रय लेके रहे थे। देखो आप, देखो तमाशा करके देखो। बहुत अच्छा है स्वामी सेवक महाराज, स्वामी सेवक भाव अपने भवन करिए उद्गार, हमेशा बाबू उद्धार थोड़ी होता है।
मुक्त अवस्था में रहता है क्या ये
बात? मुक्त अवस्था में स्वामी से नहीं रहता, मुक्त भाव में सख्य भाव रहता है, वात्सल्य रहता है और माधुर्य रहता है, और इसमें अद्वैत रहता है। एक सम शांत आनंद घन सदघन सदघन सम शांत मुक्ति में, और भगवान के प्रेम की बात है उसमें, वो उछाला बड़ा सुख होता है, तरंगित सुख होता है उसमें, आनंद लहर आती रहती है, विचित्र विचित्र आनंद लहर आती प्रेम में। भगवान की बातों में आनंद आ रहा है, गोपिकाएं लेती है वो आनंद, आपस में बातें करती है, भगवान की बातें करे, उस बातों में मस्त हो जाती है, आनंद मौन मग्न हो जाती है। और वो दूसरे पहचानते नहीं। आप लोग सब साथ दें तो अभी थोड़ा कीर्तन करो भैया, मस्ती से कीर्तन करना बढ़िया। अब भैया एक घंटे 11 मिनट है।